ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने सम्यग्दर्शनचरणगुण पायकुकर्मकृपाय केवलज्ञान उपाय प्रभो वये भजो शिवराय जिनवाणी के ज्ञानतय सूझे श्रद्धा चरण धारि केवल लहे पावे पद निर्वाण नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासौ जासते जाने निज गुण धाम लब्धि सार को पाय कै करि कै क्षपणा सार हो है प्रवचन सार सो समय सार अधिकार।
तीर्थंकरों की वाणी में जो चारों अनुयोगों के द्वारा उपदेश आया है उसमें से कर्णानुयोग के द्वारा हम जीव संबंधी 20 प्ररूपणाओं की बात यहाँ देख रहे हैं। हमने देखा है जीवों के जो 20 प्रकार से अलग अलग व्याख्यान हो गए, संयोगों की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा, शरीरों की अपेक्षा, उसमें से यहाँ एक तो होता है गुणस्थान और बाकी सारे जो 19 है उसको कहेंगे मार्गणास्थान। उनमें 19 में से 14 तो मार्गणाएं हैं और बाकी जो है वो जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये अन्य बातें हैं। तो हम क्रम से इनका स्वरूप देखेंगे। यहाँ पहले हम गुणस्थानों की बात छोड़कर जीव समास की बात देखने जा रहे हैं। हमने देखा है कि जीवों के विभाजन, संसारी जीवों के विभाजन, क्योंकि सिद्धों को हम अलग ही लेंगे और जो संसारी है उसकी यहां बात करेंगे। संसारी किसको कहना? हाँ बोलो बे, संसारी किसको कहना?
कर्म से बंधे हुए।
बहुत अच्छा, कर्म से बंधे हुए वो संसारी और जो कर्म रहित है वो मुक्त सिद्ध जी। बीवी बाल बच्चे इसलिए संसारी ऐसा नहीं, क्योंकि हमें संसार में रहते हुए धर्म करना है। तो क्या मानते हैं, संसार यानी हम गृहस्थी है तो गृहस्थी में रहना ये संसारी, ऐसा नहीं है। नहीं तो गृहस्थी में से मरकर अन्य भव में जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी, जैसे अन्य मती मानते हैं ना, ऐसा होता नहीं। अब यहाँ देखते है ये जो सारे संसारी जीव है किन किन, हाँ पेज नंबर आप निकाले 118 गुजराती में 14वें नंबर का जो चैप्टर है जीव समास नाम का, उसकी बात यहाँ चलेगी। वहाँ एक छोटी सी डायग्राम है उसमें हम देखेंगे। अभी यहाँ जो जीवों के विभाजन उसके जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम, तो वहाँ अपेक्षा कौन सी लगानी है, तो वो अपेक्षा ऐसी लगानी है कि उसमें कितनी इंद्रिय वाला जीव है। शरीर की भी वहां द्रवेंद्रिय की भी बात है और भावेंद्रिय यानी ज्ञान का उघाड़ दोनों की बात है, क्योंकि जितना ज्ञान का उघाड़ हो उतनी वैसी द्रवेंद्रिया वहां सहज रूप से वैसा ही कर्मों का उदय होता है और वो उत्पन्न होती है। तो यहां हम कहेंगे इंद्रियों की अपेक्षा जीवों के भेद करेंगे। तो उसमें से यहां लिखा है, देखिए आप पढ़ सकते हैं, यहां एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक 5 भेद है। एकेंद्रिय 2 प्रकार के हैं, कोई सूक्ष्म है और कोई बादर है। तो तो एकेंद्रियों में सूक्ष्म और एकेंद्रियों में बादर, ऐसे भेद तो एकेंद्रियों के हैं। फिर द्विंद्रिय जीव, त्रिंद्रिय जीव, चतुरिंद्रिय जीव, पंचेंद्रियों में असंगी और संगी। एकेंद्रिय जीव किसे कहना, तो जिनके एक ही इंद्रिय पाए जाते हैं। जब हम एक इंद्रिय कहेंगे तो वहां कोई स्पर्शन वाला होगा और कोई रसना वाला होगा, ऐसा नहीं है। जब हम कहेंगे एक इंद्रिय वाला जीव तो एक स्पर्शन इंद्रिय वाला ही होगा। जब हम कहेंगे दो इंद्रिय वाला जीव तो एक स्पर्शन और एक रसना, वहां ऐसा कोई चॉइस नहीं है कि स्पर्शन इंद्रिय के साथ किसी को श्रोत्रेंद्रिय होगा या किसी को चक्षुइंद्रिय होगा, ये बात नहीं हो सकती। क्रम हमने देखा था, कौन सा है क्रम बोलो? इंद्रियों का क्रम हम कैसे गिनते हैं? स्पर्शनेन्द्रिय, फिर हाँ आप कर्णेन्द्रिय कहो, श्रोत्रेन्द्रिय कहो, एक ही बात है। तो इसी क्रम से है और उसी क्रम से एक वाला, दो वाले, तीन वाले, ऐसा होता है। अब हम 118 पृष्ठ पर जो यहाँ लिखी है डायग्राम, वही वहां पर है। इन सभी जो अभी हमने सात प्रकार देखे, उनमें पर्याप्त भी जीव होता है और अपर्याप्त भी होते हैं। ये पर्याप्त अपर्याप्त क्या होते हैं, उसको तो हम अधिक विस्तार से पर्याप्ति वाले प्रकरण में देखने जा रहे हैं, परंतु अभी हम थोड़ा भी यहां पर भी देख लेते हैं। अपर्याप्त जब कहते हैं, और यहां जो अपर्याप्त कहे हैं उसका अर्थ होता है लब्धि अपर्याप्तक। तो ये लब्धि अपर्याप्तक क्या होता है, देखो, एक पर्याप्तक पर्याप्त नाम कर्म होता है, आपने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो अभी सुनेंगे। तो उसमें वैसे जीवों की क्या बात होती है पर्याप्त नाम कर्मों वालों की, तो जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है उनकी पर्याप्ति पूरी होती है। तो पर्याप्ति का अर्थ क्या है मालूम है किसी को? आपका हुआ है अभ्यास पर्याप्तियों का? हाँ बोलो।
संपूर्ण पूर्ण रूप से,
हाँ देखिए, पर्याप्ति के अर्थ होते शक्ति की पूर्णता। ऐसी कौन सी शक्ति है, तो अभी कौन कौन सी शक्ति हम देखेंगे ये पर्याप्तियों के प्रकरण में, फिर हम दोबारा रिपीट करेंगे इसको। देखो, जब जीव कहीं से मरकर अन्य भव में चला जाता है, तो हमने देखा साथ में तो कारमान शरीर और तेजस शरीर ही जाता है, इसका ये देह जो है औदारिक शरीर यहीं पड़ा रहता है। अब नए जो अन्य आयु बांधी है वहां चला जाता है, तो क्या होता है वहां पर, कोई जो वैकृत शरीर धारण करने वाला है या औदारिक, तो उस जाति के परमाणुओं का ग्रहण शुरू हो जाता है, उसको कहेंगे आहार, नौ कर्म का आहार। अब ये जो परमाणु ग्रहण करता है उसको खल रूप और रस रूप परिणमाने की शक्ति जीव में उत्पन्न होती है। ये शक्ति जब कहेंगे तो गुण के अर्थ में नहीं लेना है, और नहीं वो कोई शक्तिमान ऐसा कुछ है, यह तो है तो जीव का विभाव परिणमन। परंतु यहां जीव उन परमाणुओं को ग्रहण करता है और उनको रस रूप और खल रूप, ये रस क्या होता है और खल क्या होता है, रस यानी लिक्विड रूप और खल यानी सॉलिड रूप परिणमाता है। तो परमाणुओं को ग्रहण करके उनको खल रूप रस रूप परिणमाने की शक्ति की उत्पत्ति होना, इसको कहेंगे आहार पर्याप्ति। अब जब ये खल रूप रस रूप हो गए, तो जो रस रूप हुआ है उसमें से रस रूप अवयव, जिसको ये लिम्फ ब्लड आदि जो है, ऐसे अवयव उत्पन्न होते हैं, तो ये उत्पन्न होने की शक्ति होती है। और जो खल है सॉलिड है, उसमें से अन्य सॉलिड ऑर्गन्स तैयार होते हैं, जैसे मांस, मज्जा, हड्डी आदि, चमड़ी वगैरह, जिसको हम धातु कहते हैं। तो जीव में ऐसी योग्यता होती है उसके निमित्त से, हो पुद्गल का परिणमन जीव कर नहीं सकता, ये बात ख्याल में लेकर कर्णानुयोग के कथन निमित्त के कथन करने वाले होते हैं, निमित्त बताने वाले। कथन ऐसा ही होगा कि जीव ने कर्म को लिया, जीव ने कर्म को छोड़ा, जीव ने आहार यानी वो नौ कर्म परमाणु लिए, उसको परिणमाया, उसको शरीर रूप ढाला, ये कर्णानुयोग की कथन पद्धति होती है। वहां भी द्रव्यानुयोग का सिद्धांत ख्याल में रखकर ही पढ़ना है। आप कहेंगे द्रव्यानुयोग में तो निमित्त कुछ नहीं करता, और कर्णन योग में तो निमित्त सब कुछ करता, ऐसा नहीं है। ख्याल है ना, कथन निमित्त से होता है परंतु कार्य हर जगह उपादान से ही होता है, अपने निज शक्ति से होता है। पुद्गल परमाणु में शक्ति ऐसी है कि वो स्वयं शरीर रूप से परिणमे, स्वयं कर्म रूप से परिणमे, तो वहां जीव का विभाव भाव वहां निमित्त पने है। फिर कहने के लिए हम ऐसा कहेंगे, जीव ने कर्म को बांधा, जीव ने कर्म का अक्षय किया, जीव ने परमाणु को लिए, जीव ने शरीर की रचना की। हम कथन अभी ऐसा ही करेंगे और हर बार निमित्त को बताएंगे नहीं, ये समझने की जिम्मेदारी अभी आपकी है। क्योंकि एक बार बता दिया ना कि निमित्त से कार्य नहीं होता, फिर भी कथन करेंगे हम कि जीव में ऐसी योग्यता तैयार होती है कि वो परमाणु को ग्रहण करने के बाद सॉलिड लिक्विड बनावे, फिर उसमें से शरीर पर्याप्ति में क्या होता है, ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि उसको वो जो ऑर्गन्स बनते हैं अलग अलग शरीर के अवयव बनते हैं, फिर इंद्रिय पर्याप्ति होती है, ऐसी शक्ति होती है जीव में उत्पन्न होती है। अब जहां अभी मान लेते हैं यहां द्रवेंद्रिय की रचना होने वाली है, तो वहां के आत्म प्रदेशों में वर्ण को जानने की शक्ति उत्पन्न होती है। अब ये स्पर्शन इंद्रिया, स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा पुद्गल का स्पर्श जानने की शक्ति उत्पन्न होती, वहां से उपयोग रूप वो कार्य चलेगा बाद में। तो ये जो अलग अलग शक्तियों की उत्पत्ति है उसको एक छोटा अंतर्मुहूर्त लगता है। तो ऐसे ये छह पर्याप्ति होती है संगी पंचेंद्रियों में। पहले हमने देखी एक आहार पर्याप्ति, आगे के प्रकरण में सब नाम लिखे हैं, वहां हम डिटेल में उसको जानने वाले भी है। अभी पर्याप्त अपर्याप्त क्या है इसको देखना है ना, इसलिए उसको याद करते यहाँ पर। तो ये आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति यानी श्वास और उच्छ्वास करने की जो शक्ति है, उसके पश्चात भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये पर्याप्ति पूर्ण होने पर उस जीव को हम पर्याप्त कहेंगे और जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक उसको अधूरा कहेंगे। जैसे हमने घर अभी प्लॉट लिया और घर बांध रहे, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूर्ण होने वाला है, जब तक नहीं होता क्या कहेंगे, अधूरा है। तो जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक कहेंगे यह अपर्याप्त है। परंतु जिनके पर्याप्त नाम कर्म है ना हृदय में, उसके पर्याप्ति चल रही है, शुरू हो जाती है और पूर्ण भी हो जाती है, और फिर बाद में जितनी आयु है उतना जीव जीता है। परंतु जिनको अपर्याप्त नाम कर्म है उनमें क्या होता है, जितनी पर्याप्ति मान लेते संगी पंचेंद्रिय को हम, छह पर्याप्ति होती है, छह पर्याप्ति शुरू तो हो गई, शक्तियों की डेवलपमेंट शुरू हो गई, परंतु एक भी शक्ति पूर्ण होती नहीं है और जीव मर जाता है। आपने सुना होगा एक श्वास में अठ दस बार जन्मियो मर्यो, भरियो दुख भार। तो ये श्वास के 18वें भाग इतनी उसकी लाइफ स्पैन है। ये श्वास क्या होता है, श्वास सुना है क्या होता है, क्या होता है, हाँ आपको मालूम है, हाँ श्वास जो हाँ, वो श्वास नहीं है। यहाँ श्वास का अर्थ होता है जो हार्ट बीटिंग होती है ना पल्स, तो एक बार ठक और दूसरी बार ठक होता है, तो दो पल्स के बीच वाला जो अंतर है, जो उसकी टाइमिंग है। तो आप कहेंगे किसका पल्स लेना, क्योंकि बच्चे की पल्स तो फास्ट होती है, एडल्ट की कुछ विशिष्ट है, बुखार आने पर फिर फास्ट हो जाती है ना बीमार लोगों की, और किसी को हार्ट की कोई बीमारी है तो स्लो भी हो जाती है, तो किसका लेना। तो उसमें लिखा है स्पेसिफिकली जो युवान है, हेल्दी है, निरोगी है, ऐसे जो मनुष्य है उसकी जो पल्स रेट कितनी होती है एक मिनट में, यहाँ डॉक्टर बैठे है ना, हाँ बोलो, हाँ कुछ भी बोलो, यहाँ कौन जानेगा, 72 हाँ 72 है, तो एक मिनट में 72, तो दो के बीच में अंतर कितना होगा, सेकंड से भी कम हो गया ना, क्योंकि 60 सेकंड में इतने हो गए, 72 के लिए 60 सेकंड लगे तो एक के लिए कितना लगेगा। हम 80 भी अगर लेते फॉर कैलकुलेशन सेक तो 80 के लिए 60 सेकंड, तो एक के लिए 6/8, 60/80 हुए ना, तो 6/8 का अर्थ कितना हुआ, 3/4, 3/4 सेकंड राउंड अबाउट। अब उसका 18वां भाग, 3/4 × 1/18 तो इतना यानी एक 24वां भाग हो जाएगा, कि 3 से हम 18 को भाग देंगे, 3 × 18 और 6 × 4 = 24, 1/24 अंश। हम आपको थोड़ा अंदाज दे रहे हैं, तो 1 सेकंड का 24वां भाग इतनी उनकी लाइफ स्पैन। ये अपर्याप्त जीव जो अपर्याप्त भव होते हैं वो कितना छोटा है, ये तो अपनी भाषा में सेकंडों में बताया, वो एक्चुअल में उसको ऐसा ही कहेंगे, वो उसकी जो क्षुद्र भव जिसको कहते हैं, कि इतने छोटे लाइफ स्पैन में वो मर जाते, फिर दोबारा जैसे उसने काल में, उसमें भी असंख्यात समय होते हैं, उतने काल में कैसे परिणाम किए होंगे, कौन से कर्म बांधे होंगे, वहां भी आयु का बंध तो करेंगे, उसके बिना तो मरेंगे नहीं, उसके अनुसार दूसरी लाइफ मिलेगी, वो हो सकती है पर्याप्त की, हो सकती है अपर्याप्त की। तो ऐसे जो अपर्याप्त जीव कौन सी पर्याय में पाए जाते हैं, ये श्वास के 18वें भाग में मरने वाले जीव कौन सी पर्याय में होते हैं, आपने कुछ सुना है कि नहीं सुना? निगोद में, मैंने ऐसा पूछा, ये जो इतनी छोटी आयु वाले जीव है जिसको हम कहते हैं एक श्वास के 18वें भाग जितने काल, तो कौन से पर्याय निगोद में, आप क्या कहती है बहन? अपर्याप्त जीव जो है हमने, वो सभी सम्मूर्छन है, परंतु सभी सम्मूर्छन अपर्याप्त नहीं है, वो देखेंगे अभी। संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव भी महामत्स्य जैसे पर्याप्त होते हैं, परंतु वो अपर्याप्त नहीं, परंतु जितने सारे अपर्याप्त है वो सारे सम्मूर्छन ही होते हैं। गर्भ में आने वाले जीव पर्याप्त ही होते हैं, देखो फिर देखेंगे हम। यहाँ क्या मैंने पूछा था, ऐसी जो अपर्याप्त अवस्था है वो कौन से पर्याय वालों को होती है, तो बहन जी ने बताया निगोद में होती है, आपने भी बताया निगोद में होती है, और कहीं होती है या नहीं होती इसको हम देखेंगे। किसको और कुछ कहना है इसके अलावा? हाँ हिताबेन, नहीं मालूम?
निगोद में
होती है। हाँ, हमने यहाँ क्या लिखा है, अपर्याप्त जीव बद्धा साते सात मां अपर्याप्त हो,
18 बार मरना जीना वो निगोद का है, पर्याप्त अपर्याप्त उसको निगोद के साथ कुछ बोल रहे।
देखो यही हमारी जो मान्यता है कि मात्र निगोद ही जीव 18 बार जन्म मरण करेंगे श्वास में, ये बात गलत है। निगोद तो करेंगे, निगोदों में भी पर्याप्त निगोद होते हैं और अपर्याप्त निगोद होते हैं, साते साथ में, साते साथ में। कौन से सूक्ष्म एकेंद्रिय भी अपर्याप्त तो हो सकते हैं, लब्धि अपर्याप्त, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, तीन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, असंगी में भी और संगी पंचेंद्रिय में भी लब्धि अपर्याप्त जीव होते हैं, और सुनना है मनुष्यों में भी लब्धि अपर्याप्त होते हैं, जिनको सम्मूर्छन मनुष्य कहते हैं, जो श्वास एक श्वास में 8-10 बार इतना उनका लाइफ स्पैन छोटा है, ऐसा भी हो सकता है। कोई ऐसा जीव है ना कि ऐसे कोई परिणाम करता है खोटे की, अपर्याप्त नाम कर्म बांधता रहता है, तो एक बार अपर्याप्त हुआ, जैसे हमने निगोद में भी देखा है कोई जीव ऐसे कि लगातार निगोद में ही जन्म मरण करते रहते हैं, कभी बादर निगोद, कभी सूक्ष्म निगोद, कभी पर्याप्त निगोद, कभी अपर्याप्त निगोद, फिर भी निगोद में ही रहते हैं अनादि से अभी तक। ऐसे यहां कोई जीव अपर्याप्त के बाद अपर्याप्त, अपर्याप्त के बाद अपर्याप्त ऐसे लगातार करेंगे तो कितने काल तक करेंगे, तो कहते अंतर्मूर्त से ज्यादा अपर्याप्त नहीं हो सकते, बड़ा अंतर्मूर्त है ना 48 मिनट वाला, उसमें एक समय कम। क्या कहा, कोई लगातार अपर्याप्त 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 होता रहे तो कितने काल तक होगा, तो कहते हैं अंतर्मूर्त, उसके बाद क्या होगा, एकाद्भव तो पर्याप्त का बीच में आ ही जाएगा, कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त तो होता रहेगा। तो ये लगातार अपर्याप्त भाव एक जीव के कितने हो सकते हैं? एक अंतर्मूर्त में कोई जीव हम देखें अपर्याप्त में से मरकर अपर्याप्त हुआ, फिर अपर्याप्त हुआ, फिर अपर्याप्त हुआ, एक केंद्रीय में से सभी में, सभी पर्याय में अपर्याप्त अपर्याप्त होता गया, तो कितने भाव करेगा? तो 66,336। हाँ, 66,336,336 यानी 336 सबके मिलकर भाव। देखो ये आगे बात आने वाली है पर्याप्त पर्याप्त में। हाँ, तो उसमें एक इंद्रियों के जो है तो 66,132 है। अब सुन लो क्योंकि वो ढूंढने में आपका टाइम जाएगा। एक इंद्रियों के भाव यहाँ लिखे ना, एक इंद्रिय सूक्ष्म बादर के मिलकर एक इंद्रियों में कितने होते हैं? 66,132। अब एक इंद्रियों में सूक्ष्म भी है बादर भी है, वो सब मिलकर उसके 66,132 भाव होते। द्विंद्रियों में 80 भाव लगातार द्विंद्रियों में अपर्याप्त के भाव, तीन्द्रियों में 60, चतुरिंद्रिय में 40 और पंचेंद्रियों में 24। उसमें से 8 भाव असंगी पंचेंद्रिय के, 8 भाव संगी पंचेंद्रिय के यानी त्रियंचों में और 8 भाव मनुष्यों में लब्धि अपर्याप्त मनुष्य लगातार लगातार होता रहे। तो देखो सोचो तो सही, कोई मरकर बाय चांस मनुष्य कोई है और मरकर अपर्याप्तों में जन्म लिया और लगातार अपर्याप्त में के जन्म मरण करता रहा, तो एक अंतर्मूर्त में कितने भव हो गए? 66,336। या तो अभी वो मरा कि नहीं वो भी मालूम नहीं, और सर्टिफिकेट भी नहीं देते ना डॉक्टर लोग इंडिया में, तो नहीं देते इतनी जल्दी। क्यों, डेथ सर्टिफिकेट देते क्या इतनी जल्दी? दे वॉन्ट टू मेक इट श्योर। और इतने काल में तो कितने भव उसके चले जाएंगे और फिर भी हम रोते रहते हैं, किसके लिए? अपने लिए, उसके लिए थोड़ी रोते हैं, वो तो बेचारा चला गया। देखो अभी हम यहाँ देखते ये पर्याप्त अपर्याप्त क्या है, इसको हमको देखना था। ऐसे देखो इन सभी पर्यायों में जीव विद्यमान है अभी वर्तमान में, और हम भी अभी अनादि से हम आए हैं यहाँ मनुष्य पर्याय में, तो इन सभी पर्यायों में घूम कर आए हैं। कभी किस पर्याय में गए थे, कभी किस पर्याय में, कभी किस पर्याय में, परंतु जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब ये तो भव भ्रमण ये चक्र तो ही चलता ही रहता है। तो हम यहाँ देखते हैं एक इंद्रियों के सूक्ष्म क्या होता है और बादर क्या होता है, उसकी बात हमने सुबह नहीं देखी थी। अब हम पढ़ेंगे ये जो डायग्राम है उसके नीचे पढ़ेंगे थोड़ा। एक इंद्रिय जीवों को एक स्पर्शन इंद्रिय ही है, इनके 5 प्रकार है। किनके? एक इंद्रियों के, जिनको क्या कहते हैं? स्थावर काय कहते हैं ना, आपने कल देखा था, पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, 5 प्रकार के ये सारे ही एक इंद्रिय जीव हैं। इनको दूसरा एक नाम है, क्या है नाम है?
स्थावर
का, इनको स्थावर नाम है। हाँ, बहन ने बताया। तो ये जो है देखो अभी काया किसको कहते हैं? शरीर को। तो जिनकी काया ही पृथ्वी है, पृथ्वी ही जिनकी काया है उनको पृथ्वी कायिक जीव कहते हैं, जल ही जिनकी काया है उनको जल कायिक जीव कहते हैं। ऐसे हरेक में लगा है। देखो हम जैनी है कि इनको जीव मानते हैं, मानते हैं ना, जानते हैं जो भगवान ने बताया है जानकर। बाकी अन्य मति जो है इनको जीव मानेगा कोई? अरे वनस्पति को भी अभी तक कोई जीव नहीं मानता था जब तक वो जगदीश चंद्र बसु ने नहीं प्रूव किया है कि उनमें भी जीव है और वो सूर्य प्रकाश की ओर बढ़ती है वगैरह वगैरह, उन्होंने प्रूव किया था ना। अग्नि में जीव है कौन मानता है? हा? हम जैनी तो मानते हैं ना। देखो उसमें श्वासोश्वास होता है कि नहीं होता अग्नि में? उसमें लंग्स वगैरह हो गए कि नहीं, नाक वगैरह कुछ उसकी जरूरत है उसको? देखो वहां हम अग्नि हम देखते स्कूल में हम करते थे एक्सपेरिमेंट्स, क्या ऐसी जलती हुई मोमबत्ती रखो और ऊपर पूरा बंद कर दो उसको, क्या होगा? क्यों? हाँ उसके जलन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, वो नहीं मिलता है, तो वहां भी उसका भी श्वासोश्वास चलता है। सब में समझना, पृथ्वी में, पृथ्वी कायिक में, जल कायिक में, अग्नि कायिक में, वायु कायिक में, तो वो तो हवामय ही है परंतु वहां भी चलता है। तो ये जो सारे जीव है, तो हम आगे बढ़ते, देखो तुम सोचोगे कि एक बड़ा जलाशय, जलाशय यानी जल का समूह, जैसे कोई तालाब है, कोई कुआं है या कोई नदी है, अभी यहां हमारा समुद्र है इतना बड़ा पैसिफिक ओशन, तो एक बड़ा जलाशय, एक जल का एक जीव होगा, हमें ऐसा लगता है ना, हाँ ये जल का एक जीव है। एक बड़ा पर्वत है, मान लेते हिमालय आल्प्स है, तो एक जीव है क्या, क्या है, तो वो एक जीव नहीं है। एक विशाल पर्वत एक पृथ्वी का एक जीव होगा, ऐसा कोई सोचता हो तो उसके लिए बता रहे। प्रचंड आग एक अग्नि का एक जीव होगा, और एक बड़ा वृक्ष एक ही वनस्पति का एक जीव होगा, परंतु ऐसा है नहीं। तो ऐसा है नहीं तो कैसा है? तो इन सब एकेंद्रीय जीवों की अवगाहना यानी साइज बहुत छोटी है। हमने कहा ना, उनका एक एक का देह, एक एक देह बहुत छोटा है। अनेक देह इकट्ठे आते हैं तो हमें ये दिखाई देते हैं। जैसे आपने वो कोरल्स वगैरह देखे ना, वो क्या होते, अनेक जीवों के शरीर वहां जुड़े हैं, तो हमें ये एक कोरल है। ऐसे एक जो वनस्पति है उसमें अनेक जीवों के शरीर जुड़े हुए हैं, तो हमें लगता है ये एक बड़ा पेड़ है। एक बड़ा पर्वत है तो उसमें तो अनेक पृथ्वी का जीवों के शरीर एक साथ जुड़े हुए हैं। अंगुल के असंख्यात भाग जितनी इनकी अवगाहना है। अंगुल किसको कहना, ये तो अंगुली जो है उसकी जो चौड़ाई है उसको हम अंगुल कहेंगे। जल की एक बूंद में, देखो अभी ये बात केवल ज्ञानी ने जानी हुई है, क्योंकि हम तो इसको जान नहीं सकते हैं। जल का एक जीव, जल में जीव रहते वो अलग हो, जल के अंदर जो कोई बैक्टीरिया हो गए, कोई अन्य जीव हो गए, वो उसकी बात यहां नहीं हो रही है। जल इट्सेल्फ इज अ जीव, जल ही जिनका शरीर है। तो जल की एक बूंद में असंख्यात जलकायिक जीव होते हैं, यानी असंख्यात जलकायिक जीव इकट्ठे होते हैं, तो उनके सब शरीरों को मिलकर हमें जल की एक बूंद दिखाई देती है। यानी वो जीव कितने यानी छोटा साइज वाले हो गए, और ऐसे कितने जीव पूरी दुनिया में हो गए। जल में जो अन्य त्रस जीव पाए जाते हैं उनकी चर्चा नहीं हो रही। जो अग्नि हमें दिखाई दे रहा है उसमें असंख्यात अग्नि का एक जीव है। एक चिंगारी में भी जो दिखाई दे रहा है, ऐसा कहा ना, जो दिखाई नहीं देते ऐसे सूक्ष्म जीव तो है ही है। सूक्ष्म अग्नि का एक भी पूरे वातावरण में है, सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक भी पूरे लोकाकाश में फैले हुए। थोड़ी सी मिट्टी में असंख्यात पृथ्वी का एक जीव रहते हैं। केवल मिट्टी ही नहीं, अभी पृथ्वी का एक कहाँ कहाँ रहते हैं, तो देखो पत्थर, रेत, रत्न, माणिक, हीरा, खदान के धातु यानी जो सोना वगैरह जो हम देखते हैं, अन्य अन्य धातु जो सारे लोहा वगैरह जो खदान में से मिलते हैं, वो सारे पृथ्वी का एक जीव है। सब पृथ्वी का एक के भेद है। जिन हीरे माणकों और सोने का हमें इतना आकर्षण है, क्या उनके स्वरूप का कभी विचार भी किया है? अभी विचार करेंगे थोड़ा, वो क्या है। देखो पृथ्वी कायिक जीव कब कहेंगे, वो जीव कहीं से मरकर आया है और उसने पृथ्वी काय ने शरीर उसका बन गया, तो उसको हम पृथ्वी कायिक जीव कहेंगे। उसमें से जीव निकल गया तो क्या रह जाएगी, काया रह जाएगी। जैसे हम कहते ना यहां जीव रह रहा है, इसमें से मान लेते मैं चला गए तो क्या रह जाएगा, काया शरीर रह जाएगा। डेड बॉडी कहते हैं ना इसको, अभी क्या है,
जीव जीव
है। अभी ये क्या है, डेड बॉडी है क्या, लिविंग है, लिविंग है बॉडी, लिविंग है क्या, डेड है
बॉडी,
वो लिविंग हम कहते हैं, ये उपचार है। बॉडी में लाइफ है कि नहीं है,
नहीं है।
बॉडी इटसेल्फ अचेतन है ना, शरीर है, पुद्गल है, उसमें जीव के प्रदेश रहते हैं, तब तक हम उसको लिविंग कहेंगे। ये हुआ उपचार, ख्याल है ना। क्यों जीव है वहां, इसलिए उसको लिविंग कहते हैं। और जीव निकल गया तो क्या कहेंगे? डेड है, डेड बॉडी कहेंगे। अभी भी ये डेड ही है।
वो अजीव तो है, बॉडी अजीव है इससे।
हाँ, बॉडी इटसेल्फ अजीव, हम उतना ही वो पूछ रहे हैं। तो हम कहते हैं, जब हम कहते हैं कोई मर गया तो कौन मरता है? जीव मरता है कि शरीर मरता है?
कोई नहीं मरता,
कोई नहीं मरता। देखो, जीव इसलिए नहीं मरता क्योंकि उसका नाम ही जीव है। वो अभी मनुष्य रूप से था, फिर देव रूप से गया, तिरंज रूप से, कहीं ना कहीं उसके आयु चालू ही है, अन्य आयु, तो वो कभी मरता ही नहीं। और शरीर क्यों नहीं मरता? क्योंकि वो कभी लिविंग था ही नहीं। वो मरने के लिए उसको जीता तो फिर हम कहेंगे ये मर गया, वो कभी जिया ही नहीं है। नहीं समझे? ये जीव और पुद्गल दोनों इकट्ठे रहते हैं तो हम कहेंगे ये जीव को भी कह रहे कि वो जी रहा है, इसने जन्म लिया। शरीर के साथ संयोग हुआ ना, तो इसको जन्म हुआ। और शरीर के साथ वियोग हुआ, दूसरा शरीर आके मिला, तो कहेंगे ये इसका मरण हुआ। और फिर ये चला गया, दूसरा अन्य उसने शरीर धारण किया, तो वहां फिर कहेंगे ये जन्मा। तो ये जीव है हा? तो यहां जन्मा और फिर ये मर गया और फिर जन्मा, तो ये तो यही रहा ना
जीव।
तो जीव तो जीव रहा, उसको कहां मरने से फुर्सत। परंतु हमने अभी ऐसा नहीं माना है। हम पृथ्वी का एक की बात कर रहे थे, वो पृथ्वी काई जो शरीर के साथ जीव था, उसमें से जीव निकल गया, नीचे क्या रहा? उसकी काया रहेगी। हाँ, अभी देखो यहाँ क्या लिखा है। खदान में कोयला हो या हीरा माणिक हो, सभी एकेंद्रीय जीव है। मिला कि नहीं? खदान में से बाहर निकालने पर उसमें से जीव निकल जाता है, तब रहता है उन जीवों का कलेवर। कलेवर यानी डेड बॉडी, बॉडी रहती है ना उनकी। हम पंचेंद्रीय जीव बुद्धि में अपने आप को महान मानते हैं, परंतु अपने संयोग के इस देह पर, क्या देह क्या है, इस कलेवर पर, ये भी बॉडी है ना। अभी भी उस बॉडी में कोई लाइफ नहीं है, लाइफ हम स्वयं है खुद। तो इस कलेवर पर एकेंद्रियों के कलेवर धारण करते हैं, हीरा माणिक पहनते हैं, सोना पहनते हैं, और क्या समझते हैं देखो, और बड़े गर्व के साथ उसका प्रदर्शन करते रहते हैं। अन्य भोले अज्ञानी जीव भी उनकी ओर देखकर ईर्ष्या करते हैं। अरे उसके पास तो डायमंड है, मेरे पास नहीं है, तो हम उसके प्रयत्न में रहेंगे, मुझे भी लाना है, मुझे भी खरीदना है, मुझे भी पहनना है, और ये सब धारण करते हैं ना शरीर पर। और क्या आप मानते हैं? मैं सुंदर हो गया। अभी तक क्या शरीर के कारण अपने को सुंदर मानता था? देखो मैं गोरा हूं, मैं इतना हाइट वाला हूं, ये इतने मेरे बाल सुंदर है, ऐसा ऐसा, यानी अपने को शरीर रूप मानता था। अब और क्या करे, अभी उसके ऊपर और कुछ ना कुछ धारण करता है, और मैं और सुंदर हो गया ऐसा मानता है। अब हम देखते हैं आगे, इन पांचों ही प्रकार के एकेंद्रियों को स्थावर काय या स्थावर जीव कहते हैं। हमने कल देखा था इनको स्थावर क्यों कहना, उनके स्थावर नाम कर्म का उदय पाया जाता है। वो स्थिर है इसलिए स्थावर, और चलते इसलिए त्रस, ऐसा नहीं है। इन सबके सूक्ष्म और बादर दो दो भेद है। हमने एकेंद्रियों के दो दो भेद देखे हैं। सूक्ष्म वाला भेद द्विंद्रिय आदि में नहीं है, द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीव बादर ही है। एकेंद्रियों में बादर भी है और सूक्ष्म भी है। तो पहले ये क्या है उसको देखते हैं। सूक्ष्म जीवों का पहले वर्णन करेंगे। सूक्ष्म और बादर ये नाम कर्म की प्रकृति। अभी जैसे हमने देखा था, पर्याप्त वाला एक नाम कर्म है, अपर्याप्त एक नाम कर्म है, वैसे यहां सूक्ष्म नाम कर्म है और बादर एक नाम कर्म है। जीव जब गतिया वगैरह बांधता रहता है तो इसमें से कोई ना कोई प्रकृति उसकी बनती रहती है। अब सूक्ष्म नाम कर्म का जब उदय होता है तो उसको ऐसे शरीर की उत्पत्ति होती है जिसको हम सूक्ष्म जीव कहेंगे। और बादर नाम कर्म का उदय है तब क्या होगा? ऐसा बादर शरीर प्राप्त होगा, उसके हम लक्षण देखेंगे कि हम उनको कहेंगे ये बादर जीव है। फिर से सूक्ष्म जीव किसको कहना?
नहीं देख सकते आंख से।
हाँ, बादर जीव भी इतने छोटे होते कि आंख से नहीं देख सकते। बादर जीवों की भी अवगाहना, इट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया कि सूक्ष्म को नहीं देख सकते और बादर को देख सकते। उसका एक है ऐसा कि वो प्रतिघात से रहित होते सूक्ष्म, और बादर वो प्रतिघात सहित होते। ये प्रतिघात क्या होता है, तो जैसे एक बादर शरीर है बादर जीव और दूसरा बादर जीव है, तो ये थ्रू एंड थ्रू पास नहीं हो सकता, वो प्रतिघात है। यानी ये बादर का शरीर दूसरे को रोकता है और ये जो बादर है वो भी दूसरे के द्वारा रोका जाता है, इसको कहते हैं बादर। और सूक्ष्म जीव वो सूक्ष्म परिणमन है, उसके कोई रोका नहीं सकते। देखो हम देखते हैं किसी एक पुद्गल में से दूसरा पुद्गल पास होते हुए देखा है कभी, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है दूसरा उसमें से पुद्गल पास होते हुए, आपको मालूम है? आप जरा सोचना,
प्रकाश लाइट
हाँ, जैसे ग्लास पीस है सॉलिड, हमारी उंगली तो उसमें से नहीं जाती है, लाइट तो लाइट पास हो सकता है, और उसमें से एक्सरे पास होगी कि नहीं होगी? होगी ना, एक्सरे को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो थ्रू एंड थ्रू पास हो सकते हैं, और भी कितने ही रेडिएशन वगैरह वो भी थ्रू एंड थ्रू पास हो सकते, वो तो पुद्गल है सारे, फिर भी वो पास हो सकते हैं। तो इन सूक्ष्म जीवों का शरीर ऐसा है जिसमें वो सूक्ष्म परमाणुओं से, सूक्ष्म टाइप ऑफ परमाणु, साइज वहां नहीं लेना टाइप लेना, उसकी जाति वो सूक्ष्म परिणमन वाली होती है, क्योंकि छोटी उसको सूक्ष्म और बड़ी उसको हम अगर स्थूल कहेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि सूक्ष्म की जो रेंज है ना, ये सूक्ष्म की जघन्य अवगाहना मिनिमम सूक्ष्म जीवों के, ये छोटे में छोटा साइज और ये सूक्ष्म का बड़ा साइज। अब बादर में इन बिटवीन बादर का छोटा साइज आता है और फिर बादर का बड़ा साइज, यानी जो बीच वाले जो साइजेस है वो ओवरलैप होते हैं दोनों के लिए, इसलिए हम बादर यानी छोटा और सूक्ष्म बादर यानी बड़ा ऐसा नहीं कह सकते। तो हम उसका यहाँ पुस्तक के आधार से देखेंगे। देखो पहले में पहली बात, सूक्ष्म नाम कर्म का उदय वाले उसको सूक्ष्म कहेंगे। सूक्ष्म जीव वज्र अग्नि जल पर्वत मेरु आदि से रोके नहीं जा सकते, यानी अग्नि के द्वारा वो जलते नहीं है, सूक्ष्म जीवों की बात चल रही, जल के द्वारा वो गलते नहीं है, वायु के द्वारा हट जाए ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव है। जैसे हम झाड़ू से कचरा निकाल रहे हैं, तो झाड़ू से कौन सी चीजें हटेगी, पेपर होगा या कोई कपड़े पर गिरे होगे या अन्य कोई चीजें की जो झाड़ू से हट जाएगी, परंतु बीच में वो सूर्य प्रकाश आ रहा है, वो भी पुद्गल है ना, तो उसको झाड़ू से हम हटाएंगे तो हटेगा कि नहीं हटेगा?
नहीं,
ख्याल है ना। ऐसे ही ये जो सूक्ष्म जीवों के शरीर है वो किसी वज्र से पर्वत से वगैरह वो थ्रू एंड थ्रू उसमें से रहेंगे भी, उसके अंदर भी रहेंगे हमेशा, क्योंकि लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर सूक्ष्म जीव रहते हैं। पांचवी प्रकार के सूक्ष्म जीव कौन से, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म जल कायिक और सूक्ष्म वनस्पति कायिक, जिसको हम सूक्ष्म निगोद कहेंगे। पूरे अभी एक खंभे के भी थ्रू एंड थ्रू अंदर सारे भरे हैं, यहाँ पूरे दीवारों के अंदर भी, पूरे लोकाकाश में, पर्वतों के अंदर बाहर यानी समुद्रों के अंदर बाहर सर्वत्र ये पड़े हैं, खचो खच पड़े हैं, पूरे लोकाकाश में सूक्ष्म जीव खचो खच पड़े हैं। उनकी हिंसा हमसे होती ही नहीं, क्यों? हम ऐसा हाथ करेंगे तो भी सूक्ष्म वो सूक्ष्म है, वो तो हमारे हाथ से कुछ बाधा नहीं उनको पहुंचती, हम जिसको हिंसा पहुंचा सकते वो तो सारे बादर जीव होते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या कहते, देखो सूक्ष्म जीव वज्र अग्नि जल पर्वत मेरु आदि से रोके नहीं जा सकते, अग्नि आदि से मारे नहीं जा सकते, उनका कदलीघात से मरण नहीं होता। अपनी आयु पूर्ण करके, जैसे हम कोई एक्सीडेंट में मरते हैं देखते हैं, वैसे उनके कोई घात ही नहीं होता है ना, किससे घात होगा उनको, ना किसी शस्त्र से कटते हैं, तो इसलिए उनकी जितनी आयु होती है उतनी पूर्ण करके, उनके आयु भी छोटी होती है, अंतर्मूर्त से भी छोटा अंतर्मूर्त, उतनी आयु पूर्ण करके वो मर जाते हैं। वे अन्य जीवों को मारते नहीं और अन्य जीव उन जीवों को मार नहीं सकते, उनकी हिंसा कर नहीं सकते, क्योंकि वो सूक्ष्म परिणाम है। कैसे मरेंगे? जब हम ऐसा करेंगे तो सूक्ष्म जीव इसमें से थ्रू एंड थ्रू निकल जाएंगे। ख्याल आता है ना?
ये कदली घात माने क्या है?
हाँ, आपका प्रश्न है ये कदली घात क्या होता है। देखो अभी जो हम देखेंगे, जो कोई पर्याप्त जीव है, जो कोई जीव है, वे कोई विशिष्ट आयु बांधते हैं। अभी हमारी जो आयु है, चल रही है, उसको हम कहते हैं भुज्यमान आयु, और जो नेक्स्ट भव की आयु बांधते हैं उसको कहते हैं बध्यमान आयु। अभी हम सब मनुष्य आयु का हमारा उदय चल रहा है। ये आयु हमने कब बांधी है? पूर्व भव में। एक ही भव की बांध सकते हैं? हाँ, दो चार भवों की उसका इंतजाम नहीं कर सकते। चलो अभी पूजा वगैरह कर रहे हैं तो दो चार भव की आयु बांध के रखें, ये नहीं हो सकता है। जैसे हम दो चार पीढ़ी के लिए, सात पीढ़ी के लिए धन कमा के रखते हैं ना, हाँ वैसे वहां नहीं होता, एक भव की आयु बनती है। तो ये अभी हमने पूर्व भव में बांधी है। मान लेते हैं कि अभी हम 100 साल की आयु बांध के आए हैं यहाँ, तो ये आयु जब बनती है तो जो आयु का जो हमने देखा था ना, उसके में निशे कैसे देखे थे, आड़ी लाइन, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जितने परमाणु इकट्ठे किए, आयु के परमाणु, आयु का बंध हुआ है ना, आयु नाम का जो कर्म है उसके परमाणु हमने वहां इकट्ठे किए, जीव ने उसको बांधा जो हम कहते हैं। अब उन परमाणुओं का डिस्ट्रीब्यूशन कितने काल में होगा? 100 वर्ष के जितने समय है, प्रत्येक समय में उसका एक एक लॉट रहेगा, और हमारा पहले आयु के पहले समय से लेकर एक एक लॉट खिरेगा। हम कहेंगे आयु का उदय चल रहा है, हर समय एक एक लॉट खिरता है, जिसको निषेक कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेक। तो हर समय वो उसका निषेक का उदय चलता है और हमारी आयु चल रही है मनुष्यों की। अभी हम कोई आदमी है 25 साल का है, उसके सत्ता में कर्म कितना पड़ा है? 100 साल का कर्म पड़ा है। अब ऐसा मनुष्य विष भक्षण या उसके कोई हिमरेज हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई अन्य चीज से क्या हो सकता है? मरण होता है। देखते हैं तो उसमें क्या होता है? कदली घात होता है। क्या अर्थ क्या है? जो इतने सारे निषेक पड़े, इतने 100 साल में डिस्ट्रीब्यूशन होके, उसकी उदीर्णा होकर वो अंतर्मूर्त के बन जाते हैं। अभी उसने आयु नहीं बांधी है, वो तो उतने सारे 100 साल में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो एक छोटे अंतर्मूर्त के इतने उसके निषेक हो जाते, सारे परमाणु उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर उतने काल में वो नया आयु का भी बंद करता है, वहां जैसे परिणाम हो गए वैसा, और फिर अंतर्मूर्त के पश्चात उसका मरण होता है। इसको कहते हैं कदली घात से मरण।
इतने समय में उदय में आता है
तो उतने काल में उसका मरण हो जाता है, छोटा अंतर्मूर्त होता है,
अंतर्मूर्त में अपना कर्म खपा लेता है।
हाँ, खपाने पहले उदीर्णा हुई ना, 100 साल में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, अब वो सारे परमाणु एक अंतर्मूर्ति में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उस अंतर्मूर्ति में अभी मरण होने वाला है, तो उस अंतर्मूर्ति में पहले आयु बांधेगा। हाँ, आयु बांधने के लिए भी अंतर्मूर्त लगेगा, और उसके बाद वाला जितना काल रहता है उसके पश्चात उसका मरण होगा। हाँ क्या
एकदम बैठता नहीं है?
हाँ हाँ बैठे।
एक्सीडेंट में तो उसका दर्द वो ये वो उसमें अगले अगले भव की आयु कैसी?
आपका ऐसा प्रश्न है, एक्सीडेंट में मरण होता उसके अगली आयु कैसे बंधेगी? देखो हमें अंतर्मूर्त का प्रमाण पता नहीं है, एक आवली और एक समय अधिक हो जाता है तो वो मिनिमम पॉसिबल अंतर्मूर्त कहलाता है, वो 48 मिनट वाला अंतर्मूर्त यहाँ मत सोचना। एक आवली एक समय, एक आवली दो समय, एक आवली तीन समय, आवली कितनी होती है? एक सेकंड में हजारों आवली होती है, सैकड़ों कहेंगे मतलब हजारों होती है, तो आवली कितनी छोटी होगी? सेकंड का हजारवा भाग है ना, 4-5 हजार भाग करो सेकंड के, उससे भी ज्यादा होते हैं, परंतु इतनी छोटी वो आवली है, आवली का माप, उसमें भी असंख्यात समय है। अभी इतने छोटे काल से फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आप ले लो, उसमें वो आयु भी बांधेगा और आयु के पश्चात वो जो अगले काल में मरण भी होगा उसका।
एक्सीडेंट में भाव तो शुभ नहीं होगा ना, उसकी पीड़ा।
देखो आप कहते हैं एक्सीडेंट में भाव नहीं शुभ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट में भाव अशुभ ही होगा। अभी जिसने तत्व का चिंतन किया है
उसका,
हाँ जिसका अभ्यास है, एक्सीडेंट हो रहा है उसको पता है कि अभी मरण आ गया, तो बस वो तत्व का विचार करेगा उस काल में। वो तो जानते हैं तो देह तो मेरे से भिन्न है, मैं तो उससे भिन्न हुई हूँ। उस काल में भी वो सोच सकता है कि नहीं? सब कौन सोचेगा, मान लेते जैसे सुनामी जैसा महापूर आ गया, तब तैरने को सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे हम? तब उस समय तैरना सीखना है कि पहले से सीखेंगे तो उसमें से बच सकता है? पहले से सीखा हो तो ऐसा कहीं बाढ़ आती है जोर से तो उसमें चांस है कि उसको बच सकता है। वैसे ही अभी मरण आया है, सामने मरण दिख रहा है, तो नमोकार मंत्र पढ़ने से हो गया कि हमारे भाव शुभ हो जाएंगे? बाकी कुछ तत्व मालूम नहीं है, मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, कुछ मालूम नहीं है, मैं अनादि अनंत हूँ, कुछ मालूम नहीं है, मैं तो अविनाशी हूँ, कुछ मालूम नहीं है, और मरण सामने दिख रहा है, तो क्या होगा? शरीर को ही मैं मानता हूँ, अरे मैं मर गया, उसके कितने संक्लेश परिणाम हो गए। और ऐसा जो इतने तीव्र संक्लेश में मरेगा तो अधोगति में जाएगा, ख्याल आता है ना? तो इसका अर्थ क्या है, वो मरण से पहले हमें तैयार रहना है कि नहीं? अपना स्वरूप क्यों जानना है कि जब सामने मरण है तो भी ये मरण क्या है? ये तो शरीर देह का वियोग जब जो होना है तभी होना है, वो सब कुछ निश्चित है। प्रत्येक द्रव्य की हरेक समय की पर्याय सुनिश्चित है और वही होने वाली है। जो होने वाली है उसमें पांचों समवाय सब लगेंगे, निमित्त भी वही होगा। जिस जीव के जिस क्षेत्र में जिस विधि से जिस निमित्त से जैसा जन्म मरण भगवान ने देखा है, भगवान ने देखा है, बीच में क्यों डाला? क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, आगे की भी और पीछे की। तो वैसा ही होता है। तो हम जीव द्रव्य है तो हमारी अनादि से लेकर अनंत काल की एक एक पर्याय सुनिश्चित है। कौन से समय में समय दर्शन होगा, कौन से समय में केवल ज्ञान होगा, यह हमारे द्रव्य में निश्चित है। आप कहेंगे ये निश्चित है ना, तो हम अभी सो जाएंगे, समय दर्शन ये यहाँ पर समय दर्शन हो जाएगा ना, चलो अभी जाके मूवी देखते। भगवान ने उस जीव को मूवी देखते हुए नहीं देखा है। जिसको सम्यक दर्शन का काल नजदीक आया है उसके पहले उसको तत्व चिंतन करते हुए देखा है। बिना तत्व चिंतन के किसी को समय दर्शन होते हुए भगवान ने आज तक देखा ही नहीं। इसका अर्थ क्या है? तत्व चिंतन से ही सम्यक तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमें तो ये सारा निर्णय करना है ना। तत्व चिंतन यानी क्या? जो अभी हम तत्व सुन रहे हैं, जो स्पेशली जो द्रव्यानियोग के जो द्रव्य गुण पर्याय आदि जो तत्व हम सीख रहे हैं, उस संबंधी विचार चलेंगे और उसका निर्णय होगा, उसकी क्लैरिटी बढ़ेगी, तो वो सहज रूप से ये सहज होता है। बेन उसमें ये पूरा मोक्ष मार्ग सहज है, उसमें कोई खींचातानी नहीं। मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, करने के भाव आएंगे जरूर, परंतु वहां कोई भी बात ऐसे हट से नहीं होती है, सहज होता है। सुबह भी बात आई थी ना इच्छा निरोध की,
आएंगे
आएंगे,
उसके अनुरूप क्रिया भी होगी,
बिल्कुल होगी, तीनों बातें एक साथ हो रही है।
मैं कोई पुरुषार्थ ही नहीं करता ना।
देखो हमें पुरुषार्थ का अर्थ ही मालूम नहीं ना, इसलिए
पांच समय में तो आ गए ना।
देखो पुरुषार्थ तो हर द्रव्य में हो रहा है, अभी उसकी बात हम बात करें। एक तो हम जान रहे हैं, हर समय जानने का कार्य चल रहा है, ये ज्ञान गुण की पर्याय हो रही है। हर समय चारित्र का भी कार्य चल रहा है कि नहीं? हमने देखा था चारित्र गुण है तो उसका कार्य भी चल रहा है। अभी वीतराग नहीं हुआ है तो क्या हो रहा है वहां पर? राग द्वेष आदि क्रिया चल रही है, यह शुभ या अशुभ अभी सम्यक तो नहीं हुआ है, तो यहाँ राग द्वेष की भी क्रिया हो रही है। और साथ ये शरीर जो है वो पुद्गल है, पुद्गल की अपनी क्रिया होती है कि नहीं होती?
होती है।
तीन क्रिया एक साथ चल रही है। मेरे में ज्ञान हो रहा है, ये हमारी स्वभाव क्रिया है। मेरे में ही राग द्वेष हो रहे हैं, ये मेरी विभाव क्रिया है। शुभ हो या अशुभ हो, हमने दोनों को अशुद्ध उपयोग में लिया था, याद है ना? सुबह कौन से तीन उपयोग कहे थे? शुभ अशुभ और शुद्ध, तो शुभ और अशुभ को हमने अशुद्ध कहा था और जो शुद्ध उपयोग। तो यहाँ अज्ञानी जीव है उसका ज्ञान चल रहा है, वहां राग यानी शुभ या अशुभ चल रहा है, अभी उसको शुद्ध नहीं हुआ है, शुभ या अशुभ हो रहा है, और तभी उसके शरीर की भी क्रिया चल रही है। ये शरीर की क्रिया कौन से द्रव्य की क्रिया है? पुद्गल की। शुभ राग जीव की विभाव, और ये जो ज्ञान है वो उसका स्वभाव। तो जीव जान रहा है, उसके पर्याय में कभी पुण्य होता है कभी पाप होता है, और वैसे वहां शरीर की क्रिया भी होती है। तो ये भाव भी उसके होते हैं और उसके पर्याय की योग्यता से, और ज्ञान भी हो रहा है उसकी योग्यता से, और ये भी हो रहा है उसकी योग्यता से। हर एक कार्य अपनी अपनी योग्यता से होता है। इन सबको जीव ये मेरी क्रिया ऐसा मान लेता है, ये उसका इतना है।
हमको देखना और जानना
कुछ नहीं, हमें जिसकी क्रिया उसकी स्वीकार करना है बस। तो शुभ शुभ भाव आता है आने दो, नहीं आता है अशुभ है आने दो। हम कौन है? हमें इसमें स्वपना स्थापित करना है। हम क्या कर रहे हैं? मुझे राग करना है, करना चाहिए ऐसा मानते हैं। अच्छा ठीक है, और ये शरीर की क्रिया करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा स्वामित्व कहाँ है? क्रिया पर है, और उसी को हमने पुण्य माना, इसको भी नहीं माना, इसी को माना। तो हमें ऐसा लगता है निगोद के जीव पुण्य कैसे करते होंगे, क्योंकि वहां कोई क्रिया नहीं दिखती है। मैंने आपको पूछा था ये वनस्पति में क्रोध मान माया लोभ होते हैं कि नहीं होते, तो आपने कहा कैसे होते होंगे। हम तो वो पत्ता दिख रहा है ना या फूल, वो क्रोध करता है क्या मान करता है, ऐसा हम बाहर से सोचते, बाहर तो कुछ नहीं दिखाई देता। अरे पर उसके परिणाम उसके अंदर है कि शरीर में है? हम मनुष्य है तो शरीर में भी कुछ उसके साथ साथ, देखो एक साथ क्रिया चलती है। जैसे जीव के हास्य के परिणाम हुए तो शरीर भी हंसता है, यहाँ क्रोध के परिणाम हुए तो वहां भी कुछ उसके शरीर में चेंजेस होते हैं। परंतु मुझे बताओ, बाहर से तो बहुत शांत हंसता है और अंदर क्रोध से उबलता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, किसी वो किसी सेठ ने नौकर पर गुस्सा किया बहुत जोर से, बोल नहीं सकता, अरे बोलेगा तो नौकरी जाएगी उसकी, तो यस सर करते हैं, और अंदर क्या हो रहा है?
अंदर तो होता है कि लाग मिले हम चांस मिले तो हम,
हाँ अभी देखो तो सही, बाहर आ हो सकता है ना। तो ये जीव के परिणाम अलग है, शरीर की क्रिया अलग है, और मैं ज्ञान वाला मेरी जानने की क्रिया अलग है। हमें इसको कहेंगे भेद ज्ञान करना है। इसके लिए ना शरीर को हटाना है और ना शुभ अशुभ को हटाना है, हमें तो होते हुए को जानना है। ये अपने हाथ की बात है कि नहीं? अभी हम रोटी वेल रहे तो ये शरीर की क्रिया हो रही है इसका जान सकते कि नहीं? और रोटी की क्रिया रोटी में हो रही है, हाथ की क्रिया हाथ में हो रही है, और मेरी जानने की क्रिया मेरे में हो रही है, और रोटी वेलने का भाव आ रहा है वो भी विकारी भाव है, वो भी आ रहा है। हम क्या कहते हैं, मैं करूं तो होगा, नहीं तो कैसा होता है देखो। देखो इसको कहते हैं कि ज्ञानी के ये सहज भेद ज्ञान 24 घंटे चलता रहता है। ये जड़ की क्रिया है कि मेरी है कि ये विकारी भाव है, इतना तो जान सकते कि नहीं जान सकते?
अशुभ भाव आता है तो भी देखते रहो,
देखते रहो, यानी उसका जाना किसने है अशुभ भाव को? किस तो ज्ञान वो मैं हूं, देखते रहो यानी हमें अशुभ ही अशुभ में ही रुचि है, और देखो हम देखते रहते हैं। किसको देखते हैं? अरे हम टीवी को देखते हैं, हम सबको, और रुचि कहाँ है? टीवी को देखने में। तो टीवी को देखने में क्या उधर जाए, उसमें हिंसा पाप होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे टीवी देखने में हिंसा काहे की होती है? अरे वहां वो फाइट कर रहे हैं, उसके हाथ में बंदूक है पिस्तौल है और दूसरा उसको मार रहा है, आप क्या एडवाइस देते हैं?
इसे ये इलाका है, उसने मारा, अच्छा हुआ बुरा?
अच्छा नहीं आप कहते हैं, अरे हाथ में पिस्तौल है तू देख रहा है, जरा मार ना गोली, यहाँ बैठे बैठे सोफा पर। एडवाइस देते कि नहीं उसको? अरे उसको हाथ में पिस्तौल पकड़ने का और नहीं मारने का पैसा मिल रहा है, और आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आप पाप बांध रहे हैं अनुमोदना का और कारित वाला। अब बता रहे कि अरे मार तो इसको कहेंगे अनर्थ दंड बिना प्रयोजन का। आपको उसमें कुछ नहीं लेना देना और यहाँ बैठे बैठे वहाँ उनका झगड़ा करता है और यहाँ ये बिल्कुल मन में मैं हिंदू था ऐसा कर देता उसका ऐसा सबक ये सारे बिना कुछ कारण राग द्वेष के परिणाम हम यहाँ करते रहते हैं। तो उसके कारण ऐसा बंद भी हो रहा है उस समय हो हाँ पता नहीं ना हमें अभी तो अपना समय होने को आया। ये जो कदली घाट से बात आई थी हर समय के कोई ना कोई परिणाम होता है और हर समय के परिणाम का वहां वैसा बंद भी होता है। भले वो काल छोटा है परंतु केवली भगवान के तो ज्ञान में आता है कि इस जीव के कैसे परिणाम है। तो उस कदली घाट के काल में भी वहां जीव के वैसे परिणाम के योग्य उनकी आयु बंधेगी। तो इस तरह से उसका हम देखेंगे आगे क्या क्या होता है उसके कि वो सूक्ष्म किसको कहना बादर किसको कहना उनमें क्या क्या डिफरेंस है उसकी बात हम रात के प्रवचन में करेंगे। अभी अपना समय हो गया। बोलो 2400 भगवान की जय।